अध्याय संख्या 34, सामान्य प्रायिकता वक्र, नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व, NORMAL, नॉर्मल PROBABILITY, नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व। पिछले अध्यायों में किसी समूह के द्वारा प्राप्त समांकों के आवृत्ति वितरण तथा आवृत्ति वक्र की चर्चा की जा चुकी है। ये आवृत्ति वितरण या वक्र छात्रों के वास्तविक प्राप्तांकों, जिन्हें उन्होंने किसी परीक्षण पर प्राप्त किए हैं, के आधार पर बनाए जाते हैं। इसलिए इन वितरणों या वक्रों को प्राप्य वितरण, ऑब्जर्व्ड डिस्ट्रीब्यूशन, या प्राप्य वक्र, ऑब्जर्व्ड कर्व कहते हैं। जैसे यदि छात्रों के तीन समूह हों, जिनमें क्रमशः 50, 300, 1200 छात्र हों, की बुद्धि लब्धि ज्ञात की जाए, तो उनके वितरण व आवृत्ति वक्र की आकृति काफ़ी सीमा तक आगे दिए गए आवृत्ति वितरणों व आवृत्ति वक्रों के अनुसार होगी। तीनों वक्रों के अवलोकन से स्पष्ट है कि जैसे जैसे समूह का आकार अर्थात n बढ़ता जा रहा है, आवृत्ति वक्र एक घंटे के आकार का स्वरूप लेता जा रहा है, जिसमें अधिकतर आवृत्तियां मध्य में स्थित हैं, तथा जैसे जैसे सिरों पर बढ़ते हैं, आवृत्तियां घटती जाती हैं। यह वक्र एक सममित वक्र, सिमेट्रिकल कर्व है, तथा सामान्य वक्रता, मीजोकार्टिक कर्व रखता है। इस प्रकार के वक्र को ही सामान्य वक्र या सामान्य समावयवता वक्र, नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व कहते हैं। शिक्षा, मनोविज्ञान, समाजशास्त्र, अर्थशास्त्र आदि के अधिकांश चर बड़े समूहों में इस वक्र के अनुरूप वितरित होते हैं। वर्ग 125 से 134, F=3, 115 से 124, F=6, 105 से 114, F=11, 95 से 104, F=18, 85 से 94, F=7, 75 से 84, F=4, 65 से 74, F=1, I=10, N=50। यद्यपि व्यवहार में सामान्य वक्र की प्राप्ति संभव नहीं है, तथा व्यवहार में कोई भी चर पूर्ण रूप से सामान्य वक्र के रूप में वितरित नहीं होता, तथापि प्राप्य वक्रों की आवृत्ति सामान्य वक्र के आकार को प्राप्त करने की होती है। जैसे जैसे n बढ़ता है, वैसे वैसे प्राप्य आवृत्ति वक्र सामान्य वक्र के अनुरूप होता जाता है। प्राप्य वक्रों को इस प्रवृत्ति के कारण व्यवहारिक समस्याओं के अध्ययन में विभिन्न चरों के सामान्य रूप से वितरित माना जाता है। सामान्य वक्र की विशेषताओं की सहायता से इन समस्याओं को हल किया जा सकता है। स्पष्ट है कि सामान्य वक्र का एक सैद्धांतिक गणितीय तथा आदर्श वक्र है, जिसकी व्यवहार में पूर्ण प्राप्ति लगभग असंभव ही है। सामान्य प्रायिकता वक्र की विशेषताएँ, करैक्टरिस्टिक्स ऑफ नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व। प्रथम, आवृत्ति। एक सामान्य घंटाकार पूर्ण सममित SK=0 एकल बहुलांकी यूनिमोडल सामान्य वक्रता वाला मीसोकार्टिक के U=0.263 वक्र है। इस वक्र के दोनों सिरों पर आवृत्तियां कम होती हैं, तथा केंद्र की ओर अधिक आवृत्तियां होती हैं। अधिकतम आवृत्तियां केंद्र में स्थित होती हैं, जहां वक्र का शीर्ष बिंदु स्थित होता है। द्वितीय, गणितीय समीकरण। सामान्य वक्र की गणितीय समीकरण निम्नवत है। Y=n/σ√2πe(e)(x²)2σ², जहाँ Y=x बिंदु पर स्थित कोट की ऊंचाई, X= मध्यमान से प्राप्तांक, X= दूरी अर्थात xX-M, σ= मानक विचलन, N= कुल आवृत्ति, π= स्थिरांक जिसका मान 3.1416 होता है, e=  स्थिरांक जिसका मान 2.7128 होता है। 3, केंद्रीय मानों की समानता, इक्वालिटी ऑफ मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। सामान्य वक्र में तीनों केंद्रीय मान अर्थात मध्यमान, मध्यांक व बहुलांक समान होते हैं तथा वक्र के मध्य बिंदु पर स्थित होते हैं। अतः सामान्य वक्र की स्थिति में m बराबर md बराबर mo। चतुर्थ, अनंत स्पर्शी ए सिम्प्टोटिक, ए सिम्प्टोटिक ए एस वाई एम पी ओ पी टी ओ टी आई सी, ए एस वाई एम पी टी ओ टी आई सी एसिम्प्टोटिक। सामान्य वक्र दोनों दिशाओं में अनंत की ओर अग्रसर होता है। इसको इसके दोनों सिरे आधार रेखा के निकट आते रहते हैं, परंतु वे आधार रेखा को कभी भी स्पर्श नहीं करते। दूसरे शब्दों में सामान्य वक्र आधार रेखा को अनंत पर स्पर्श करना है। पाँच, वक्रता दिशा परिवर्तन बिंदु पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। वक्रता दिशा परिवर्तन बिंदु वे बिंदु हैं जहां वक्र अपनी वक्रता दिशा में परिवर्तन करता है। सामान्य वक्र मध्यमान से एक मानक विचलन ऊपर व नीचे अर्थात प्लस माइनस एक सिग्मा पर अपनी दिशा परिवर्तित करता है। यह वक्र प्लस एक सिग्मा से माइनस एक सिग्मा के बीच आधार रेखा की ओर अवतल कनकेव होता है, जबकि प्लस एक सिग्मा से ऊपर व माइनस एक सिग्मा से नीचे आधार रेखा की ओर उत्तल होता है। छः, चतुर्थांकों में समान अंतर इक्वल डिफरेंस ऑफ क्वार्टाइल्स फ्रॉम मीडियन। सामान्य वक्र में प्रथम व तृतीय चतुर्थांकों का मध्यांक से अंतर समान होता है। यह अंतर चतुर्थांक विचलन के बराबर होता है, जिसे संभाव्य त्रुटि पी ई कहते हैं, अर्थात क्यू थ्री माइनस एम डी बराबर एम डी माइनस क्यू वन बराबर क्यू या पी ई। साथ, चतुर्थांक विचलन तथा मानक विचलन में संबंध रिलेशनशिप बिटवीन क्यू डी एंड एस डी। सामान्य वक्र में चतुर्थांक विचलन मानक विचलन के लगभग दो तिहाई होता है, अर्थात Q बराबर 0.6745 सिग्मा तथा सिग्मा बराबर 1.482 Q। आठ, सर्वोच्च कोटि हाईएस्ट ऑर्डिनेट। सामान्य वक्र में आधार रेखा के बिल्कुल मध्य में अर्थात मध्यमान बिंदु पर स्थित कोटि की ऊंचाई अधिकतम होती है तथा यह कुल आवृत्तियों अर्थात n बराबर 0.3989 होती है। इस कोटि को सर्वोच्च कोटि कहते हैं। नौ, क्षेत्रफल संबंध एरिया अंडर एनपीसी। सामान्य वक्र तथा आधार रेखा के बीच का क्षेत्रफल सामान्य वक्र का क्षेत्रफल कहलाता है तथा यह कुल आवृत्तियों को प्रकट करता है। सामान्य वक्र की किन्हीं भी दो कोटियों के बीच का क्षेत्रफल उन कोटियों के सापेक्ष प्राप्तांकों के बीच अंक पाने वाले छात्रों की संख्या को प्रदर्शित करता है तथा यह कुल क्षेत्रफल का एक निश्चित प्रतिशत होता है। मध्यमान से एक मानक विचलन दूरी पर स्थित कोटि व मध्यमान पर स्थित कोटि के बीच कुल प्राप्तांकों के 34.13% प्राप्तांक होते हैं। मध्यमान से दो मानक विचलन दूरी ऊपर स्थित कोटि व मध्यमान पर स्थित कोटि के बीच कुल प्राप्तांकों के 47.72% प्राप्तांक होते हैं। मध्यमान से तीन मानक विचलन पर स्थित कोटि व मध्यमान पर स्थित कोटि के बीच कुल प्राप्तांकों के 49.87% प्राप्तांक होते हैं। मध्यमान के दोनों तरफ 50% छात्र होते हैं। स्पष्ट है कि सामान्य वक्र में प्रथम मध्यमान से प्लस माइनस एक सिग्मा के बीच 68.26% प्राप्तांक होते हैं। द्वितीय, मध्यमान से प्लस माइनस दो सिग्मा के बीच 95.44% प्राप्तांक होते हैं। तृतीय, मध्यमान से प्लस माइनस तीन सिग्मा के बीच 99.74% प्राप्तांक होते हैं। क्योंकि प्लस माइनस थ्री सिग्मा के बीच 99.74% अर्थात लगभग सभी प्राप्तांक आ जाते हैं, अतः व्यावहारिक समस्याओं के लिए मान लिया जाता है कि सामान्य वक्र प्लस माइनस तीन सिग्मा के बीच सभी अर्थात 100% प्राप्तांक आ जाते हैं। सामान्य प्रायिकता वक्र सारणी टेबल ऑफ एनपीसीए सामान्य वक्र की विभिन्न कोटियों के बीच प्राप्तांकों का प्रतिशत सामान्य वक्र सारणी टेबल ऑफ एनपीसी की सहायता से ज्ञात किया जा सकता है। सामान्य वक्र सारणी का उपयोग करने के लिए प्राप्तांकों एक्स को मानक प्राप्तांकों जेड स्कोर्स जिन्हें सिग्मा मान भी कहते हैं में बदलना पड़ता है। किसी प्राप्तांक एक्स को सिग्मा मान में बदलने के लिए उसमें से मध्यमान घटा देते हैं तथा फिर मानक विचलन से भाग कर देते हैं। अतः किसी प्राप्तांक एक्स का मान सिग्मा मान एक्स माइनस एम बटे सिग्मा के बराबर होता है। यहाँ यह बात ध्यान रखने की है कि यदि सिग्मा मान ऋणात्मक होता है अर्थात यदि एक्स का मान मध्यमान से कम होता है तो वह प्राप्तांक सामान्य वक्र के मध्यमान बिंदु से बाईं ओर स्थित होता है। यदि सिग्मा मान धनात्मक होता है अर्थात यदि एक्स का मान मध्य मान से अधिक होता है तो वह प्राप्तांक सामान्य वक्र में मध्यमान बिंदु से दाईं ओर स्थित होता है। क्योंकि मध्यमान का सिग्मा मान शून्य के बराबर होता है इसलिए मध्यमान बिंदु को जीरो सिग्मा बिंदु भी कहा जाता है। सामान्य वक्र सारणी के प्रथम स्तंभ में सिग्मा मान के विभिन्न मान दशमलव के एक स्थान तक लिखे गए हैं तथा प्रथम पंक्ति में सिग्मा मान के लिए दशमलव का दूसरा स्थान लिखा गया है। अतः प्रथम स्तंभ में 0 से 5 तक के अंक तथा प्रथम पंक्ति में 0 से 0.09 तक के 10 अंक लिखे हुए हैं। सारणी के शेष भाग में मध्यमान कोटि व अन्य विभिन्न सिग्मा मानों पर स्थित कोटियों के बीच छात्रों के प्राप्तांकों का प्रतिशत दिया हुआ है। जैसे यदि किसी प्राप्तांक का सिग्मा मान 1.54 है तथा मध्यमान व 1.54 सिग्मा पर स्थित कोटियों के बीच प्राप्तांकों का प्रतिशत ज्ञात करना हो तो प्रथम स्तंभ में 1.5 तथा प्रथम पंक्ति में 0.04 देखेंगे तथा 1.5 वाली पंक्ति व 0.04 वाले स्तंभ के कटाव पर लिखी संख्या पढ़ लेंगे। सारणी में स्पष्ट है कि यह संख्या 43.83 है। इसका अर्थ है कि मध्यमान कोटि व 1.54 सिग्मा मान वाली कोटि के बीच 43.83 प्राप्तांक हैं। दूसरे शब्दों में मध्यमान व 1.54 सिग्मा मान के सापेक्ष प्राप्तांक के बीच अंक प्राप्त करने वाले छात्रों की संख्या 43.83% है। क्योंकि सामान्य वक्र एक सममित वक्र है इसलिए मध्यमान से दाईं ओर व बाईं ओर बराबर दूरी पर स्थित कोटि अक्षों तथा मध्यमान पर स्थित कोटि के बीच प्राप्तांकों की संख्या बराबर होती है। अतः यदि सिग्मा मान ऋणात्मक होगा तो सामान्य वक्र में क्षेत्रफल मध्यमान के बाईं ओर होगा तथा यदि सिग्मा मान धनात्मक होता है तो क्षेत्रफल मध्यमान के दाईं ओर होगा किंतु ये दोनों क्षेत्रफल बराबर होंगे। सामान्य प्रायिकता वक्र के प्रत्यय का उपयोग यूज ऑफ नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व। जैसा कि स्पष्ट किया जा चुका है कि शिक्षा मनोविज्ञान समाजशास्त्र आदि के अधिकांश चर सामान्य वक्र के रूप में वितरित होते हैं। मापन व मूल्यांकन के क्षेत्र में सामान्य वक्र के प्रत्यय का अत्यंत महत्व है। अध्यापक गण सामान्य वक्र का उपयोग अपनी व्यवहारिक समस्याओं के समाधान के लिए करते हैं। यदि किसी चर पर प्राप्तांकों के वितरण को सामान्य वितरण के रूप में स्वीकार किया जा सके तो सामान्य वक्र की सहायता से निम्न समस्याओं का समाधान किया जा सकता है। ए, किसी समूह में किसी दिए गए प्राप्तांक से अधिक या कम अंक पाने वाले छात्रों की संख्या ज्ञात करना। बी, किसी समूह में दिए गए किन्हीं दो प्राप्तांकों के बीच अंक प्राप्त करने वाले छात्रों की संख्या ज्ञात करना। सी, किसी समूह में किसी विशेष स्थिति वाले छात्रों की प्राप्तांक सीमाएं ज्ञात करना। डी, किसी परीक्षण के प्रश्नों की सापेक्षिक कठिनाई स्तर ज्ञात करना। ई, किसी समूह को इस प्रकार से कुछ उपसमूहों में विभाजित करना कि प्रत्येक उपसमूह में योग्यता का प्रसार डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एबिलिटी सामान्य रहे। इन सभी प्रकार की समस्याओं के समाधान में सामान्य वक्र के प्रयोग को कुछ उदाहरणों की सहायता से समझा जा सकता है। किसी प्राप्तांक से अधिक या कम अंक प्राप्त करने वाले छात्रों की संख्या ज्ञात करना। कभी कभी किसी समूह के लिए किसी चर पर मध्यमान व मानक विचलन ज्ञात होता है तथा किसी प्राप्तांक से अधिक या कम अंक प्राप्त करने वाले छात्रों की संख्या ज्ञात करनी होती है। यदि उस चर पर प्राप्तांकों के वितरण का सामान्य स्वीकार कर लिया जा सके तो सामान्य वक्र सारणी की सहायता से इस प्रकार की समस्याओं को हल कर सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले प्राप्तांक की आवश्यकता अनुसार उच्च सीमा व निम्न सीमा को सिग्मा मान में परिवर्तित कर लेते हैं तथा उस सिग्मा मान पर स्थित कोटि व मध्यमान कोटि के बीच के प्राप्तांकों का प्रतिशत ज्ञात कर लेते हैं। तत्पश्चात सिग्मा मान से नीचे या ऊपर के प्राप्तांकों की प्रतिशत संख्या ज्ञात कर लेते हैं। क्योंकि सामान्य वक्र सतत चर कंटिन्यूअस वेरिएबल का वक्र है, इसलिए सामान्य वक्र की सहायता से समस्या हल करते समय विभिन्न प्राप्तांकों की उच्च या निम्न सीमा पर स्थित कोटि अक्षों के दाएं या बाएं ओर छात्रों की प्रतिशत संख्या ज्ञात करते हैं, ना कि उस प्राप्तांक पर स्थित कोटि अक्ष के दाएं या बाएं ओर छात्रों की संख्या। जैसे यदि 19 से कम अंक प्राप्त करने वाले छात्रों की संख्या ज्ञात करनी हो तो सामान्य वक्र सारणी में 28.5 के सिग्मा मूल्य को देखेंगे। वास्तव में उन सभी छात्रों को 29 अंक दिए जाते हैं जिनके प्राप्तांक 28.5 से लेकर 29.5 तक होते हैं। अतः जब 29 से कम अंक प्राप्त करने वाले छात्रों की चर्चा करते हैं तो इसका अर्थ है कि 28.5 से कम वाले छात्र। इसी प्रकार से जब 29 से अधिक अंक पाने वाले छात्रों की चर्चा की जाती है तो इसका अर्थ है 29.5 से अधिक वाले छात्र। अतः जब किसी प्राप्तांक से कम अंक प्राप्त करने वाले छात्रों की संख्या ज्ञात करनी होती है तो उस प्राप्तांक की निम्न सीमा पर विचार करते हैं तथा जब किसी प्राप्तांक से अधिक अंक प्राप्त करने वाले छात्रों की संख्या ज्ञात करनी होती है तो उस प्राप्तांक की उच्च सीमा पर विचार करते हैं। उदाहरण, 400 छात्रों के एक समूह की को हिंदी परीक्षण दिया गया जिस पर मध्यमान 55 तथा मानक विचलन 12 था। हिंदी परीक्षण पर प्राप्तांकों के वितरण को सामान्य रूप से वितरित मानकर ज्ञात करिए कि ए, कितने छात्रों ने 65 से अधिक अंक प्राप्त किए हैं, बी, कितने छात्रों ने 40 से अधिक अंक प्राप्त किए हैं, सी, कितने छात्रों ने 60 से कम अंक प्राप्त किए हैं, डी, कितने छात्रों ने 35 से कम अंक प्राप्त किए हैं। हल स्पष्ट है कि n बराबर 400, m बराबर 55, सिग्मा बराबर 12। ए, क्योंकि 65 से अधिक अंक प्राप्त करने वाले छात्रों की संख्या ज्ञात करनी है इसलिए सामान्य वक्र में 65 की उच्च सीमा अर्थात 65.5 के सिग्मा मान पर स्थित कोटि के दाईं ओर का क्षेत्रफल उन छात्रों की संख्या को व्यक्त करेगा जिनके प्राप्तांक 65 से अधिक हैं 65.5 को सिग्मा मान में परिवर्तित करने पर। x का सिग्मा मान बराबर x माइनस m बटे सिग्मा, 65.5 का सिग्मा मान बराबर 65.5 माइनस 55 बटे 12 बराबर 0.84 सिग्मा। अतः सामान्य वक्र में 0.84 सिग्मा पर स्थित कोटि के दाईं ओर स्थित छात्र ही वांछित होंगे जिन्हें आड़ी रेखाओं से प्रदर्शित किया गया है। सामान्य वक्र सारणी में स्पष्ट है कि मध्यमान या 0 सिग्मा के दाईं ओर कुल छात्र बराबर 50%, मध्यमान या 0 सिग्मा से 0.84 सिग्मा तक कुल छात्रों की संख्या बराबर 29.95%। अतः 84 सिग्मा के दाईं ओर कुल छात्र बराबर 20.05। अतः 20.05% छात्र 65 से अधिक अंक प्राप्त करते हैं। 100 छात्रों में से 20.05 छात्र 65 से अधिक अंक प्राप्त करते हैं तो एक छात्र में से 20.05 बटे 100 छात्र 65 से अधिक अंक प्राप्त करेंगे। 400 छात्रों में से 20.05 बटे 100 गुणे 400 छात्र 65 में से अधिक अंक प्राप्त करेंगे बराबर 80.20। क्योंकि छात्र संख्या पूर्णांक में ही हो सकती है इसलिए कहेंगे कि 80 छात्रों ने 65 से अधिक अंक प्राप्त किए हैं? बी, क्योंकि 40 से अधिक अंक प्राप्त करने वाले छात्रों की संख्या ज्ञात करनी है, इसलिए सामान्य वक्र में 40 की उच्च सीमा अर्थात 40.5 के सिग्मा मान पर स्थित कोटि के दाईं ओर का क्षेत्रफल उन छात्रों की संख्या को प्रदर्शित करेगा जिनके प्राप्तांक 40 से अधिक हैं। 40.5 को सिग्मा मान में परिवर्तित करने पर 40.5 का सिग्मा मान बराबर 40.5 माइनस 55/12 बराबर -1.21 सिग्मा। अतः सामान्य वक्र में एक -1.21 सिग्मा पर स्थित कोटि के दाएं ओर का क्षेत्रफल वांछित छात्रों को प्रदर्शित करेगा। स्पष्ट है कि -1.21 सिग्मा मध्यमान के बाईं ओर स्थित होगा, वांछित छात्रों की तिरछी रेखाओं से प्रदर्शित किया गया है। सामान्य वक्र सारणी से स्पष्ट है कि मध्यमान या जीरो सिग्मा से दाईं ओर कुल छात्र बराबर 50%, -1.21 सिग्मा से जीरो सिग्मा तक कुल छात्र बराबर 38.69%, -1.21 सिग्मा से बाईं ओर कुल छात्र बराबर 88.69%। अतः 88.69% छात्र 40 या इससे अधिक अंक प्राप्त करते हैं। 100 छात्रों में से 88.69 अंक छात्र 40 से अधिक अंक प्राप्त करते हैं। एक छात्र में से -88.69/100 छात्र 40 से अधिक अंक प्राप्त करेंगे। 400 छात्रों में से 88.96/100×400% छात्र 40 से अधिक अंक प्राप्त करेंगे बराबर 354.76। अतः 355 छात्रों के अंक 40 से अधिक होंगे। सी, क्योंकि 60 से कम अंक प्राप्त करने वाले छात्रों की संख्या ज्ञात करनी है, इसलिए सामान्य वक्र में 60 की निम्न सीमा अर्थात 59.5 के मान सिग्मा मान पर स्थित कोटि के बाईं ओर का क्षेत्रफल उन छात्रों की संख्या को बताएगा जो 60 से कम या कम अंक प्राप्त करते हैं। 59.5 को सिग्मा मान में बदलने पर 59.5 का सिग्मा मान बराबर 59.5 माइनस 55/12 बराबर 0.37 सिग्मा। अतः सामान्य वक्र में 0.37 सिग्मा पर स्थित कोटि के बाईं ओर के छात्र ही वांछित छात्र होंगे जिन्हें तिरछी रेखा से व्यक्त किया गया है। सामान्य वक्र सारणी से मध्यमान या जीरो सिग्मा के बाईं ओर छात्र बराबर 50%, मध्यमान या जीरो सिग्मा से 0.37 सिग्मा तक छात्र बराबर 14.47, अतः 0.37 सिग्मा से दाईं ओर कुल छात्र बराबर 64.47। अतः 64.47 छात्र 60 से कम अंक प्राप्त करते हैं। 600 छात्रों में से 64.47 छात्रों के प्राप्तांक 60 से कम हैं। अतः एक छात्र में से 64.47/190 छात्रों के प्राप्तांक 60 से कम होंगे। 400 में से 64.47/100×400 छात्रों के प्राप्तांक 60 से कम होंगे बराबर 257.88। अतः 258 छात्रों के प्राप्तांक 60 से कम होंगे। डी, क्योंकि 35 से कम अंक प्राप्त करने वाले छात्रों की संख्या ज्ञात करनी है, इसलिए सामान्य वक्र में 35 की निम्न सीमा अर्थात 34.5 के सिग्मा मान पर स्थित कोटि के बाईं ओर का क्षेत्रफल उन छात्रों की संख्या बताएगा जो 35 से कम अंक प्राप्त करते हैं। 34.5 को सिग्मा मान में बदलने पर 34.5 का मान 34.5 - 55/12 - 1.71 सिग्मा। अतः सामान्य वक्र में -1.71 सिग्मा पर स्थित कोटि के बाईं ओर के छात्र ही वांछित छात्र होंगे जिन्हें तिरछी रेखा से प्रकट किया गया है। सामान्य वक्र सारणी से मध्यमान या जीरो सिग्मा के बाईं ओर छात्र बराबर 50%, मध्यमान या जीरो सिग्मा से -1.71 सिग्मा तक छात्र बराबर 45.64%, -1.71 सिग्मा के बाईं ओर छात्र बराबर 4.36%। अतः 4.36% छात्रों के प्राप्तांक 35 से कम होंगे। 100 छात्रों में से 4.36 छात्रों के प्राप्तांक 35 से कम हैं। अतः एक छात्र में से 4.36/100 छात्रों के प्राप्तांक 35 से कम होंगे। 400 छात्रों में से 4.36/100×400 छात्रों के प्राप्तांक 35 से कम होंगे बराबर 17.44। अतः 17 छात्रों में प्राप्तांक 35 से कम होंगे। दो प्राप्तांकों के बीच अंक प्राप्त करने वाले छात्रों की संख्या ज्ञात करना। किसी समूह का मध्यमान व मानक विचलन ज्ञात होने पर किन्हीं भी दो प्राप्तांकों के बीच अंक प्राप्त करने वाले छात्रों की प्रतिशत संख्या को सामान्य वक्र की सहायता से ज्ञात किया जा सकता है। इसके लिए छोटे प्राप्तांक की निम्न सीमा व बड़े प्राप्तांक की उच्च सीमा को सिग्मा मानों में परिवर्तित करके उन दोनों सिग्मा मानों पर स्थित कोटियों के बीच का क्षेत्रफल ज्ञात कर लेते हैं। यह क्षेत्रफल ही उन दोनों प्राप्तांकों के बीच अंक प्राप्त करने वाले छात्रों की प्रतिशत संख्या को व्यक्त करेगा। छोटे प्राप्तांक की निम्न सीमा व बड़े प्राप्तांक की उच्च सीमा इसलिए लेते हैं क्योंकि इन दोनों प्राप्तांकों के बराबर प्राप्तांक वाले छात्र भी दोनों प्राप्तांकों के बीच अंक प्राप्त करने वाले छात्रों के समूह में आएंगे। उदाहरण, एक बुद्धिलब्धि परीक्षण 500 छात्रों के समूह को दिया गया जिसका मध्यमान 100 तथा मानक विचलन 15 पाया गया। छात्रों के बुद्धिलब्धियांकों प्राप्तांकों को सामान्य रूप से वितरित मानकर ज्ञात करो कि ए, कितने छात्रों के बुद्धिलब्धियांक 115 व 130 के बीच होंगे। बी, कितने प्रतिशत छात्रों के बुद्धिलब्धियांक 80 से 112 के बीच होंगे। हल स्पष्ट है कि n बराबर 500, m बराबर 100, सिग्मा बराबर 15। ए, क्योंकि 115 व 130 के बीच बुद्धिलब्धियांक वाले छात्रों की संख्या ज्ञात करनी है, इसलिए सामान्य वक्र में 115 की निम्न सीमा अर्थात 114.5 अर्थात 130 की उच्च सीमा अर्थात 130.5 पर स्थित कोटियों के बीच का क्षेत्रफल उन छात्रों को प्रकट करेगा जिनके प्राप्तांक 115 व 130 के बीच होंगे। अतः 114.5 व 130.5 को सिग्मा मूल्यों में बदलने पर 114.5 का मान सिग्मा मान बराबर 114.5 माइनस 100/15 बराबर 0.96 सिग्मा, 130.5 का मान बराबर 130.5 माइनस 100/15 बराबर 2.03 सिग्मा। अतः सामान्य वक्र में 0.96 सिग्मा व 2.03 सिग्मा पर स्थित कोटियों के बीच क्षेत्रफल वांछित छात्रों को प्रदर्शित करेगा जिन्हें तिरछी रेखाओं से व्यक्त किया गया है। सामान्य वक्र सारणी से 0 सिग्मा से 2.03 सिग्मा तक छात्र बराबर 47.88%, 0 सिग्मा से 0.96 सिग्मा तक छात्र बराबर 33.15%। अतः 0.96 सिग्मा से 2.03 सिग्मा तक छात्र बराबर 14.73%। अतः 14.73% छात्रों के बुद्धिलब्धांक 115 व 130 के बीच होंगे। 100 छात्रों में से 14.73 छात्रों के प्राप्तांक 115 व 130 के बीच होंगे। एक छात्र में 14.73/100 छात्र के प्राप्तांक 115 व 30 के बीच होंगे। इसलिए 500 छात्रों में से 14.73/106×500 छात्रों के प्राप्तांक 115 व 130 के बीच होंगे बराबर 73.65। अतः 74 छात्रों की बुद्धिलब्धि 115 व 130 के बीच होगी। बी, क्योंकि 80 व 112 के बीच अंक प्राप्त करने वाले छात्रों की प्रतिशत संख्या ज्ञात करनी है, इसलिए सामान्य वक्र में 80 की निम्न सीमा अर्थात 79.5 तथा 112 की उच्च सीमा 112.5 के सिग्मा मानों पर स्थित कोटियों के बीच का क्षेत्रफल उन छात्रों को व्यक्त करेगा जिनके प्राप्तांक 80 व 112 के बीच हैं। अतः 79.5 व 112 सिग्मा को सिग्मा मानों में बदलने पर 79.5 का सिग्मा मान बराबर 79.5 -100/15 -1.37 सिग्मा, 112.5 का सिग्मा मान बराबर 112.5 माइनस 100 बटे 15 बराबर 0.83 सिग्मा। अतः सामान्य वक्र में माइनस 1.37 सिग्मा व 0.83 सिग्मा पर स्थित कोटियों के बीच का क्षेत्रफल वांछित छात्रों को प्रदर्शित करता है जिन्हें तिरछी रेखाओं से व्यक्त किया गया है। अतः सामान्य वक्र सारणी से 0 सिग्मा से माइनस 1.73 तक छात्र बराबर 41.4 सिग्मा प्रतिशत, 0 से प्लस 0.83 सिग्मा तक छात्र बराबर 29.67 प्रतिशत, माइनस 1.37 सिग्मा से प्लस 0.83 सिग्मा तक छात्र बराबर 71.14 प्रतिशत। अतः 71.14 प्रतिशत छात्रों के प्राप्तांक 80 व 112 के बीच होंगे। दिए गए प्रतिशत या संख्या वाले छात्रों की उच्च व निम्न सीमाएं ज्ञात करना। किसी समूह का मध्यमान व मानक विचलन ज्ञात होने पर सामान्य वक्र के प्रत्यय की सहायता से वे प्राप्तांक ज्ञात किए जा सकते हैं जिनके बीच किसी दिए गए प्रतिशत या संख्या के छात्र अंक प्राप्त करते हैं। इस प्रकार की समस्याओं में सबसे पहले सामान्य वक्र की छात्रों की संख्या प्रतिशत दो कोटियों के बीच के क्षेत्रफल के रूप में व्यक्त कर लिया जाता है तथा फिर इन कोटियों के सिग्मा मूल्यों को सामान्य वक्र सारणी से ज्ञात करके मूल प्राप्तांकों में बदल देते हैं। ये प्राप्तांक ही वांछित छात्रों के प्राप्तांकों की सीमाएं प्रकट करते हैं। किसी सिग्मा मान को मूल प्राप्तांक में बदलने के लिए निम्न सूत्र का प्रयोग किया जाता है। मूल प्राप्तांक बराबर x बराबर m प्लस सिग्मा मान गुणे सिग्मा। दूसरे शब्दों में किसी सिग्मा मान को मूल प्राप्तांक में बदलने के लिए उसे मानक विचलन से गुणा करके मध्यमान से जोड़ देते हैं। उदाहरण, छात्रों के एक समूह में 400 छात्र थे जिनका सामान्य ज्ञान परीक्षण पर मध्यमान 40 तथा मानक विचलन 10 प्राप्त हुआ। ज्ञात करिए कि ए, सामान्य ज्ञान परीक्षण पर 20% श्रेष्ठतम छात्र किस प्राप्तांक से अधिक अंक प्राप्त करेंगे। बी, सामान्य ज्ञान परीक्षण पर मध्य के 50% छात्र किस किस प्राप्तांकों के बीच अंक प्राप्त करेंगे। सी, सामान्य ज्ञान परीक्षण पर नीचे के 280 छात्रों के प्राप्तांक किस प्राप्तांक से कम होंगे। स्पष्ट है कि n बराबर 400, m बराबर 40, सिग्मा बराबर 19। ए, क्योंकि 20% श्रेष्ठ छात्र ही वांछित छात्र हैं इसलिए ये सामान्य वक्र में दाईं ओर स्थित होंगे तथा वक्र के सबसे दाईं ओर का 20% क्षेत्रफल इन छात्रों को प्रकट करेगा। सामान्य वक्र में इस क्षेत्रफल को तिरछी रेखाओं से व्यक्त किया गया है। स्पष्ट है कि कोटि इस 20% क्षेत्रफल को शेष 80% क्षेत्रफल से अलग कर रही है। उस कोटि के सापेक्ष मूल प्राप्तांक ही 20% श्रेष्ठ छात्रों के प्राप्तांकों की निम्न सीमा होगी। अतः इस कोटि के सापेक्ष मानक प्राप्तांक को सामान्य वक्र सारणी की सहायता से ज्ञात करके उसे मूल प्राप्तांक में बदल देंगे। परंतु सामान्य वक्र सारणी में 0 सिग्मा से 0 सिग्मा से किसी दूरी पर स्थित कोटियों के बीच स्थित छात्रों की प्रतिशत संख्या दी गई होती है इसलिए पहले वांछित कोटि व 0 सिग्मा पर स्थित कोटि के बीच छात्रों का प्रतिशत ज्ञात करेंगे। क्योंकि 0 सिग्मा से दाईं ओर 50% छात्र होते हैं तथा वांछित कोटि के दाईं ओर 20% छात्र हैं इसलिए 0 सिग्मा वांछित कोटि के बीच 30% छात्र होंगे। अब सामान्य वक्र सारणी की सहायता से देखा जाएगा कि 30% के लिए सिग्मा मान क्या है। सारणी में 29.95% के लिए मान 0.84 सिग्मा, अतः 0 सिग्मा व 0.84 सिग्मा के बीच लगभग 30% छात्र होंगे। 0.84 सिग्मा के ऊपर लगभग 20% छात्र होंगे। अतः 0.84 सिग्मा को मूल प्राप्तांक में बदलना होगा। मूल प्राप्तांक x बराबर m प्लस सिग्मा मान गुणे सिग्मा बराबर 40 प्लस 0.84 गुणे 10 बराबर 48.4। अतः ऊपर के 20% छात्रों के प्राप्तांक 48.4 से अधिक होंगे। दूसरे शब्दों में श्रेष्ठ 20% छात्र कम से कम 48.4 या इससे अधिक अंक प्राप्त करेंगे। बी, क्योंकि बीच के 50% छात्र ही वांछित छात्र हैं, अतः इसके आधे छात्र 25% मध्यमान या 0 सिग्मा से नीचे होंगे तथा आधे अर्थात 25% मध्यमान या 0 सिग्मा के ऊपर होंगे। सामान्य वक्र में इन छात्रों को तिरछित रेखाओं से प्रदर्शित किया गया है। स्पष्ट है कि इन छात्रों को प्रदर्शित करने वाले क्षेत्रफल को शेष क्षेत्रफल से अलग करने वाली कोटियों के सापेक्ष प्राप्तांक ही वांछित प्राप्तांक होंगे। 0 सिग्मा व वांछित कोटियों के बीच 25% छात्र हैं, अतः सामान्य वक्र सारणी से 25% के लिए सिग्मा मान देखा जाएगा जो कि 0.67 सिग्मा है। स्पष्ट है कि 0 सिग्मा के दाईं ओर की कोटि के लिए यह +0.67 सिग्मा होगा तथा दाईं ओर की कोटि के लिए यह -0.67 सिग्मा होगा। अतः -0.67 सिग्मा तथा +0.67 सिग्मा को मूल प्राप्तांकों में बदलने पर -0.67 सिग्मा के लिए मूल प्राप्तांक बराबर 40+ ब्रैकेट में -0.67 × 10 = 33.3 +0.67 सिग्मा के लिए मूल प्राप्तांक बराबर 40+0.67 × 10 = 46.7 क्योंकि 0.67 सिग्मा व +0.67 सिग्मा के बीच मध्य के 50% छात्र होंगे, अतः -0.67 सिग्मा का मूल प्राप्तांक अर्थात 33.3 बीच के 50% छात्र की निम्न सीमा होगी तथा +0.67 सिग्मा का मूल प्राप्तांक अर्थात 46.7 बीच के 50% छात्रों की उच्च सीमा होगी। दूसरे शब्दों में बीच के 50% छात्र 33.3 व 46.7 के बीच अंक प्राप्त करेंगे। सी, क्योंकि नीचे के 280 छात्र ही वांछित छात्र हैं, इसका अर्थ है कि 280/400 × 100 = 70% छात्र ही वांछित छात्र हैं तथा ये सामान्य वक्र में बाईं ओर स्थित होंगे, अतः वक्र के बाईं ओर का 70% क्षेत्रफल इन छात्रों को प्रदर्शित करेगा। क्योंकि सामान्य वक्र में 0 सिग्मा से नीचे भी तथा ऊपर भी 50% छात्र होते हैं, इसलिए वांछित छात्रों में से 50% छात्र 0 सिग्मा के बाईं ओर तथा 20% छात्र 0 सिग्मा के दाईं ओर होंगे। इन छात्रों को तिरछित रेखाओं से प्रदर्शित कराया गया है। स्पष्ट है कि नीचे के 70% छात्रों को शेष 30% छात्रों में से अलग करने वाली कोटि के सापेक्ष प्राप्तांक ही नीचे के 70% छात्रों के प्राप्तांकों की उच्च सीमा होगी, क्योंकि 0 सिग्मा पर स्थित कोटि व वांछित कोटि के बीच 20% छात्र हैं। अतः सामान्य वक्र सारणी में 20% छात्रों के लिए सिग्मा मान देखें। स्पष्ट है कि 19.85 के लिए सिग्मा मान 0.52 सिग्मा है, क्योंकि वांछित कोटि 0 सिग्मा के दाईं ओर स्थित है, अतः वांछित कोटि का सिग्मा मान +0.52 सिग्मा होगा। +0.52 सिग्मा को मूल प्राप्तांक में बदलने पर +0.52 सिग्मा के लिए मूल प्राप्तांक बराबर 40+0.52 × 10 = 45.2 अतः नीचे के लिए 280 छात्र 45.2 या इससे कम अंक प्राप्त करेंगे।